し。الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ جل جلالہ من والہو نے ہم سب کو یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دی ہے اور یہ زندگی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی ہے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے یہ جو انسانی دنیاوی زندگی ہے اس زندگی کو اللہ نے الگ الگ انداز میں سمجھایا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں اس کو سمجھایا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر و تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد. انسانی زندگی کے جو الگ الگ سٹیجز ہیں, درجہ بدرجہ جو انسانی زندگی پروان چڑھتی ہے, اس انسانی زندگی کے الگ الگ سٹیجز کا, الگ الگ مرحلوں کا اللہ نے قرآن میں اپنے معجزانہ کلام میں معجزانہ انداز سے ذکر کیا ہے کہ انسان بچپن, نوجوانی, پھر جوانی, پھر ادھیڑپن, پھر بڑھاپا, یہ جو انسانی زندگی کے الگ الگ سٹیجز ہیں ان مرحلوں میں انسان کی زندگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کیسے انسانی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سادے انداز میں, بہت ہی پیارے پیرائے میں اللہ نے فرمایا ایک انسانی زندگی کا بالکل آغاز ہے بچپن. بچپن کے بھی دو مرحلے ہیں, ایک لاشعوری کا بچپن, ایک شعور کا بچپن, ایک ناسمجھی کا بچپن, ایک تھوڑی بہت سمجھداری کا بچپن. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے قرآن میں لفظ استعمال فرمایا لہون و لعبن. انسانی بچپن کھیل کود میں گزرتا ہے. جو بالکل لاشعوری کا بچپن ہوتا ہے, ناسمجھی کا, उस बचपन में जो इंसान के खेल होते हैं, बच्चों के जो खेल होते हैं, वो बस टाइम पास के, वक्त गुजारी के, कोई खास उसका फायदा नहीं। तो इस तरह के खेलों में इंसानी जिंदगी गुजरती है। फिर उसे एक कदम आगे बढ़ता है, शऊर आता है, थोड़ी बहुत समझ आती है, तो उसके बाद बचपन फिर भी खेल ही में गुजरता है, लेकिन वो खेल थोड़ा सा बामकसद हो जाता है। अब उछलना, कूदना, वर्जिश करना, ऐसे खेल जिन खेलों की वजह से सेहत भी बनती है, परवान भी चढ़ता है, बच्चे के पट्टे भी मजबूत होते हैं, खून की गर्दिश भी बढ़ती है, तो ऐसे खेलों में अपने आप को लगाता है जिन खेलों का फायदा भी होता है, नफा भी होता है। तो इसलिए अल्लाह जल्ले शानहु ने बचपनी जिंदगी को, बचपन की जो जिंदगी है, उस जिंदगी को अल्लाह ताला ने दो लफ्जों में समझाया, लहवुन व लाइबुन, कि पहली जिंदगी का इब्तिदा और आगाज का जो खेल है, वो खेल तो बस बेमकसद का खेल है जी। किसी के हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया गया, बच्चों ने जो है रिमोट के खेल में, रिमोट के खिलौने में वक्त गुजार लिया जी, इसी में गुजर जाता है। फिर जरा सा शोर आता है तो कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, ये भाग दौड़ की वजह से सेहत भी बन रही है। फिर उसके बाद एक दौर आता है नौजवानी का, जवानी का जी, कि नौजवानी और जवानी में इंसानी जिंदगी पर, एक नौजवान पर सबसे ज्यादा गहरा असर, गहरी छाप किसकी रहती है, उसकी सबसे ज्यादा फिक्र उसके अंदर अपने सबसे ज्यादा किस बात का जज्बा रहता है, उसको अल्लाह ताला ने समझाया वज़ीनतुन। नौजवान में बनने, संवरने, सिंघरने का जज्बा ज्यादा होता है, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छे जूते, अच्छे चप्पल जी, अच्छी सवारी, अपने आप को संवार के रखना चाहता है। नौजवानों से पूछें कि जवानी में सबसे बेहतरीन वक्त कहाँ गुजरता है, तो हर नौजवान यही बताएगा कि जवानी का सबसे उम्दा वक्त आईने के सामने गुजरता है। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को जो वो संवारता है, सिंगारता है, कभी बाल बना रहा है, कभी कपड़े संवार रहा है, ये गोया उसके वक्त का सबसे दिलचस्प और सबसे बेहतरीन मसरफ दिखाई देता है, अपने आप को संवारना, सिंगारना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो जीनत उनके जिंदगी का, जवानी का वक्त जीनत में, संवारने सिंगारने में गुजर जाता है। फिर उसके बाद एक वक्त आता है जिम्मेदारियां जब पड़ती हैं, जिम्मेदारियों के पड़ने के बाद फिर जी कॉम्पिटिशन शुरू होता है, दौड़ शुरू होती है, मुसाबका शुरू होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा बनता है, अपने जैसे दूसरों को देखकर कहता है कि उसने इतना बना लिया, इतना कमा लिया, मैं पीछे रह गया जी, तो उसके अंदर एक वलवला पैदा होता है, एक जज्बा आता है कि मुझे भी कमाना है, बनाना है, दौड़ में हिस्सा लेना है, इस कॉम्पिटिशन में मुझे भी अपने आप को आगे रखना है, तो एक दौड़ शुरू हो जाती है जिसको अल्लाह जल्ल जलाल मन वालों ने फरमाया तफाखुरन। और ये कमाना सिर्फ जिंदगी की जरूरतों के पूरा करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी होता है जी, कि अपनी एक इज्जत, अपनी नाक, अपना ओहदा, अपने आप को लोगों के सामने जी अच्छा, उम्दा और फिर बड़ा आदमी बनाए रखना, ये एक अंदर की फिक्र होती है। उस अंदर की फिक्र की वजह से इंसान ये अपने आप को दौड़ में लगाता है, दौड़ता है, भागता है और कोशिश करता है, मेहनत करता है, कमाता है, बनाता है जी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तफाखुरुम बैनकुम जी, कि एक जी मुसाबका है, एक कोशिश है, और आदमी की आपस में एक दूसरे के साथ में एक रेस है, जो लग जाती है और फिर उस इंसान उस रेस में दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, जवानी कब गुजर गई पता नहीं चलता, उधेड़पन की उम्र आ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा घेरने लगता है, तो बुढ़ापे में सब कामों से फारिग हो जाता है, या घर के बच्चे ही उसे फारिग करके किसी कोने में बैठा देते हैं, तो अब वक्त गुजारी के लिए और कुछ नहीं रहता। अल्लाह ताला फरमाते हैं तकाथुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, अब सिर्फ जो है शेखियां बगारने का वक्त होता है। जो लोग बैठे बैठे कहते हैं हम जवानी में ये कर लेते थे, हमारे दौर में ऐसा होता था, हमारा जमाना ऐसा था, हम ऐसे थे जी, यही शेखियां बगार कर या फिर अपने बच्चों के जी ओहदों को दिखाकर, अपने बच्चों की कामयाबियों को दिखाकर अपना एक जी निजाम बनाने और अपने आप को लोगों के सामने बाइज्जत बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको अल्लाह ताला ने आखिर में इरशाद फरमाया कि तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, आदमी आखिर की उम्र में वही शेखी बगारने की जिंदगी गुजारता है और लोग कहते हैं कि हम ऐसे थे वैसे थे, हमने फलां किया था और ये किया था। ये इंसानी जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में इंसान के साथ जो मरहला है, अल्लाह ताला ने उसकी जो कैफियत है उसको कुरान में बयान किया है कि ये इंसान बचपन में जी खेलकूद में रहता है, जवानी में संवरने सिंगरने में रहता है, उधेड़बन की उम्र में जी कॉम्पिटिशन में एक तगोदो और कोशिश और दौड़ में लग जाता है, और अखीर उम्र के हिस्से में खामोश बैठकर खाली वक्त शेखियां बगारने में गुजारता है। ये पूरी इंसानी जिंदगी का एक मंजरनामा है जो अल्लाह जल्ल शानहु ने पेश फरमाया है। किसी और जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसी इंसानी जिंदगी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इंसानी जिंदगी दुनियावी जिंदगी तो एक धोखे का सामान है जी, साये की तरह से है कि इंसान साये को पकड़ना चाहे उसके पीछे दौड़े तो साया तो इसके हाथ को मिलता नहीं, लगता है कि साथ ही है लेकिन हाथ को आता नहीं, तो एक धोखा है आंखों को नजर आने वाला। ये दुनिया में कामयाब हो गए हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ जमा लिया, ये इंसान को समझ में आता है लेकिन ये हाथ कुछ लगता नहीं, पूरे तौर से हाथ आता नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कि ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने जिक्र की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा के साथ मुख्तलिफ मौकों पर मुश्किल जी जरा मशक्कत भरे काम जब सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलके करते थे, जैसे आपने मस्जिद नबवी की तामीर की तो मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त पर एक बड़ा मशक्कत का काम था, बहुत मेहनत का काम था, खुदाई हो रही थी, एक तरफ मिट्टी मुंतकिल की जा रही थी, फिर ईंटें लाके जमाए जा रहे थे, सारे सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मिलकर उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। ऐसे ही जब खंदक का मौका आया और खंदक के मौके पर एक बहुत बड़ी खंदक मदीने के किनारे पर खोदना पड़ा कि मदीने के तीन तरफ पहाड़ हैं और एक हिस्सा जो पहाड़ों से खाली है उधर से दुश्मन का हमला हो सकता है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने हजरत सलमान फारसी की राय पर एक खंदक खोदी थी, बहुत बड़ा गड़ा खोदा था, वो भी बहुत मशक्कत का काम था। उस मशक्कत भरे काम में जैसे आम तौर से इंसानी आदत है कि इंसान मशक्कत भरा काम खामोशी से करता है तो मशक्कत दुगनी हो जाती है, ये डबल मेहनत हो जाती है, इसलिए आम तौर से मशक्कत का काम करते हुए लोग कुछ न कुछ बोलते हैं जी, कोई नगमा कोई गाना कोई इस तरह की बात ऐसा दोहराते रहते हैं कि जिसके दोहराने की वजह से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, जहन दूसरी तरफ जो है घूम जाता है, तो फिर मेहनत जो जिस्म पर पड़ती है वो मेहनत जिस्म की मेहनत महसूस नहीं होती, इसलिए इंसान किसी न किसी जुमले को दोहराता रहता है। मस्जिद नबवी की तामीर के मौके पर और फिर खंदक की तामीर, खंदक की खुदाई के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला दोहराते, सहाबा सब मिलकर एक साथ उस जुमले को दोहराते, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला जुमला दोहराते, सहाबा सब मिलकर उस जुमले को दोहराते। हदीस में वो दो जुमले मनकूल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा, सहाबा सब मिलके कहते अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा, तो सारे सहाबा मिलके फरमाते फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। बज़ाहिर तो लगता है कि एक मशक्क़त भरे काम में एक जुमला दोहराया जा रहा है, लेकिन हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला बड़ा मानाखेज है, बड़ा ताकतवर है, बहुत बड़ी नसीहत है और बहुत बड़ी इबरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा, फरमाया कि जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है जी, दुनियावी जिंदगी जिंदगी कहलाने के लायक नहीं है, जिंदगी कहलाने के लायक तो आखिरत की जिंदगी है। क्या आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है जी, इसलिए कि दुनिया की जिंदगी को क्या जिंदगी कहें, इस जिंदगी के साथ में मौत लगी हुई है जी। इंसान दुनिया की जिंदगी के साथ में अल्लाह ताला ने मौत लगा दी है, फिर दुनियावी जिंदगी में अल्लाह ताला ने जवानी के साथ में बुढ़ापा लगा दिया है, फिर इस जिंदगी के साथ में अल्लाह ताला ने सेहत के साथ में बीमारी लगा दी है, और फिर खुशियों के साथ में गम लगा दिया है। ये चार चीजें इंसानी जिंदगी दुनियावी जिंदगी के साथ में अल्लाह ताला ने अटैच कर दिया है, लगा दिया है। दुनियावी जिंदगी इन चार चीजों से अलग नहीं हो सकती, और कोई इन चार चीजों से इंसानी जिंदगी को अलग नहीं कर सकता। मौत से जिंदगी अलग नहीं हो सकती, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कहीं भी इंसान चला जाए मौत से बचने का कोई सामान नहीं है, मौत से बचने की कोई तदबीर नहीं है, मौत से बचने की कोई राह नहीं है, मौत से बचने की कोई जगह नहीं है जी। तो अल्लाह ताला जी, अल्लाह ने दुनियावी जिंदगी के साथ में मौत लगा दी, तो इंसान जीना चाहता है लेकिन मर जाता है जी। हर इंसान जीना चाहता है और उसके दिल में बहुत सारे अरमान, बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारे आरजू उसके दिल में पनपते हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान तो बूढ़ा होता है, मतलब उसका जिस्म बूढ़ा होने लगता है, लेकिन उसकी अरमाने जवान होती रहती हैं, उसके अंदर की ख्वाहिशें वो जवान होती रहती हैं। तो इस तरह इंसान जीने के अरमान रखता है लेकिन मर जाता है। जवान रहने की ख्वाहिश है, हमेशा इंसान चाहता है जवान रहूं, वो जवानी का जज्बा, जवानी का जोश, जवानी का वलवला, जवानी की ताकत, जवानी की हिम्मत, जवानी का खेल कूद, ये सब चाहता है हर इंसान के बाकी रहे, लेकिन बुढ़ापा उसे घेर लेता है और बुढ़ापा उसको इतना कमजोर कर देता है कि वो जवानी खत्म हो जाती है। अब उठे तो बैठना मुश्किल हो जाता है, बैठे तो उठना मुश्किल हो जाता है, नजर कमजोर हो जाती है, समाअत कमजोर हो जाती है, पूरी ताकतें इंसान की कमजोर पड़ जाती हैं जी। तो इस तरह से जवानी के साथ बुढ़ापा लगा दी हम, सेहत के साथ में बीमारी लगा दी। कोई बहुत अच्छी उम्दा चीज, बड़ा बेहतरीन पकवान जी, बड़ा ही मजेदार बना है, घर में बनाया बाहर से लाया, जी चाहता है कि दो निवाले ज्यादा खाए, उम्दा अच्छा बना है, कभी जी चाहे दो निवाले ज्यादा खा ले तो पेट खराब हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है, सेहत खराब हो जाती है। कि अल्लाह ने जिंदगी में जी सेहत के साथ में जी बीमारी लगा दी है, और ऐसे ही खुशियों के साथ में गम लगा दिया है। सुबह खुश रहता है तो शाम गमगीन हो जाता है, शाम किसी बात पे खुश होता है तो सुबह कोई ना कोई गम की खबर आ जाती है। पीछे पीछे धूप छांव की तरह से गम और खुशियां इंसान के पीछे पीछे चलती हैं, कभी खुशी कभी गम इंसान के साथ लगा रहता है जी। तो फरमा ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है जहां मौत नहीं है, मरना नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए जीना है, और फिर वहां बुढ़ापा नहीं है जी, हमेशा हमेशा की जवानी है, और फिर वहां बीमारी नहीं है जी, वहां हमेशा की सेहत है, और फिर वहां हमेशा की खुशियां हैं, हमेशा की राहतें हैं, हमेशा के लिए इंसान नेमतों में है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उम्मत को समझाई, इंसानों को बताया, और बिल्कुल मुख्तसर जवामियुल कलीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ऐसी होती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर को कूजे में भर देते हैं जी। बहुत सारे मानी मतलब, लेकिन दो जुमलों में आ गई बात कि अल्लाहुम्मा ला ईश इल्ला ईशुल आखिरा, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है जी। हमने दुनिया की जिंदगी ही को सब कुछ समझ लिया है जी। हमारे एक बुजुर्ग हैं जी हजरत मजजूब रहमतुल्लाह अलैहिम, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे, अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा प्यारा शेर है, पहले बचपन ने तुम्हें बरसों खिलाया। जी बचपन खेल का होता है, तो फरमाते हैं पहले बचपन ने तुम्हें बरसों खिलाया, फिर जवानी ने तुम्हें दीवाना बनाया, बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी तुम्हारा बिल्कुल सफाया। पहले बचपन ने तुम्हें बरसों की लाया, फिर जवानी ने तुम्हें दीवाना बनाया, बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, अजल तुम्हारा कर देगी बिल्कुल सफाया। तो इसलिए बुजुर्गो जिंदगी, दुनियावी जिंदगी जिसको हमने जिंदगी समझ लिया है, और उस जिंदगी के पीछे इंसान अपना सब कुछ लगा रहा है, सब कुछ खपा रहा है, यहां का ऐश, यहां की राहत, यहां का चैन, यहां का सुकून, हर इंसान चाहता है खाना पीना अच्छा हो जाए, पहनना ओढ़ना अच्छा हो जाए जी, साया रहने के लिए अच्छा हो जाए। जैसे दुनियावी जिंदगी में खाना पीना अच्छा हो जाए, पहनना ओढ़ना अच्छा हो जाए, साया अच्छा हो जाए, इसकी फिक्र हम में से हर एक को है, यही फिक्र हमें ये भी इसमें भी करना चाहिए कि मरने के बाद भी भूख लगेगी। मरने के बाद हशर के मैदान में जब इंसान उठेगा तो बदन पर कपड़े नहीं होंगे जी, उसे वहां कपड़े की जरूरत पड़ेगी। फिर हशर के मैदान में जब पहुंचेगा, हशर के मैदान में, तो वो हशर का मैदान सवानेजे पर जी सूरज होगा, जमीन तांबे की हो चुकी होगी, तो ऐसी जगह में एक साये की जरूरत है। फिर हशर से आगे निकलकर जब इंसान जन्नत या जहन्नम का फैसला हो, तो जन्नत नेमतों का घर है, जहन्नम मुसीबतों का घर है। तो जन्नत में जाएगा, खाना भी मिलेगा उम्दा से उम्दा, कपड़े भी मिलेंगे पहनने के लिए उम्दा से उम्दा, और रहने के लिए साया और घर भी अच्छे से अच्छा मिलेगा। तो इंसानी फिक्र सिर्फ दुनिया तक नहीं, यहां के ऐश तक नहीं, यहां की राहत तक नहीं, और फिर यहीं के साजो सामान तक नहीं, बल्कि इंसान को जी जैसे हर इंसान की जुबान पर और हर एक के दिल दिमाग पर, खास तौर से जब कोई भी बाप अपने बच्चों को देखता है तो बच्चों को देखकर उसके दिमाग में एक लफ्ज जी वो चमकने लगता है कि कैसा मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, ताबनाक मुस्तकबिल के लिए मैं अपने लिए कोशिश कर रहा हूं, अपनी औलाद के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ब्राइट फ्यूचर की जो लकीर हमने खींची है वो मौत तक की लकीर खींची है। और अल्लाह और उसके रसूल हमें बताते हैं कि ये लकीर तुमने बहुत छोटी खींच ली है, ये लकीर यहां से मिटाओ, और मिटाकर इस लकीर को थोड़ा सा आगे आखिरत तक खींच लो। ये ब्राइट फ्यूचर दुनिया का नहीं, ब्राइट फ्यूचर आखिरत का होना चाहिए, ताबनाक मुस्तकबिल दुनिया का नहीं, ताबनाक मुस्तकबिल आखिरत का होना चाहिए। और उस आखिरत के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुनिया करो, दुनिया से मना नहीं है, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, रहन सहन से, अच्छे घर से अल्लाह ने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस दुनिया में आखिरत की फिक्र करो। और दुनिया में जब आखिरत की फिक्र करते हो तो अल्लाह ताला आखिरत भी दे देते हैं, दुनिया भी मिल जाती है जी। ये अल्लाह जल्ल जलाल मन वालों आखिरत भी दे देते हैं, दुनिया भी मिल जाती है। लोग गाय दूध के लिए खरीदते हैं, गोबर साथ ही आ जाता है, गोबर से भी लोग फायदा उठा लेते हैं। खजूर लेता है तो गुठली भी आ जाती है और गुठली का भी काम हो जाता है, गुठली से भी फायदा उठा लेता है। तो इस तरह दुनिया तो गुठली की तरह से, आखिरत खजूर की तरह से है, दुनिया गोबर की तरह से है और आखिरत दूध की तरह से है। तो उसके लिए इंसान को फिक्र करने की जरूरत है और वो आखिरत का रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नेकियों से शुरू होता है, आमाल से शुरू होता है जी, माशरत मामलात अखलाक सब पर चलता है। मैंने गुज़श्ता जुमा भी अर्ज किया, दुनियादारी से अल्लाह ने मना नहीं किया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अजीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस का अजीब अंदाज से तर्जुमा किया और उसकी तशरीह की है। हदीस में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदकात बता रहे थे, सदका क्या क्या होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है। फिर आपने फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लुकमा उठाकर बीवी के मुंह में रखो, ये भी सदका है। हजरत ने, हमारे उस्ताद ने फरमाया, ये हदीस जब हम पढ़ेंगे तो आम तौर से जहन में आएगा कि लुकमा उठाकर बीवी में के मुंह में रखो, निवाला उसको खिलाओ तो सदका है। तो इसके इसका एक मंजर जी हमारे जहन में आएगा कि बीवी बीमार हो गई बेचारी, उसको बुखार हो गया, वो बिस्तर की हो गई, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और खुद से खा नहीं पा रही है, तो हम बर्तन में खाना लेके आए और हमने निवाला उठाकर उसके मुंह में रखा, तो ये निवाला मुंह में रखना सदका होगा जी। हजरत ने फरमाया ये तो सदका होगा ही, लेकिन जी हुजूर जो इरशाद फरमा रहे हैं वो बीमारी की खिदमत नहीं फरमा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, मियां बीवी मोहब्बत में प्यार में जी कहीं बैठे हुए हैं और कोई मीठी चीज या कोई उम्दा चीज सामने रखी हुई है और प्यारो मोहब्बत में एक निवाला शौहर उठा के बीवी को खिला रहा है और बीवी उठा के शौहर को खिला रही है, तो प्यारो मोहब्बत में ये जो खिलाना पिलाना हो रहा है वहां दिमाग के किसी कोने में भी अजरो सवाब का ख्याल नहीं आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं प्यारो मोहब्बत का इजहार है बीवी से और वहां कोई इंसान के दिल दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि इसमें भी कोई सवाब मिलेगा। हजरत ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम मोहब्बत में अगर अपनी बीवी को निवाला खिलाओ, उसको आइस खिला दिया, उसको कोई मिठाई का टुकड़ा खिला दिया, तो ये प्यारो मोहब्बत में हो रहा है, ये भी अल्लाह के पास जाया नहीं है, इस पर भी अल्लाह के पास सदके का सवाब मिलेगा, अजर अल्लाह ताला ता फरमाएंगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया दोनों को मिलाकर जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि इंसान अपनी जिंदगी के हर अमल में अजर कमा सकता है, सवाब बना सकता है। एक साहब ने बहुत बड़ा घर बनाया, एक बुजुर्ग को दावत दी दुआ के लिए, बुजुर्ग तशरीफ लाए, देखा बहुत बड़ा घर है, बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी हैं, तो बुजुर्ग ने ऐसे ही पूछ लिया, आपने इतना उम्दा घर बनाया है, ये बड़ी बड़ी खिड़कियां इतनी चौड़ी इतनी बड़ी खिड़कियां आपने क्यों रखी हैं? तो साहिब खाना ने बताया, हजरत ठंडी हवा घर में आए इसके लिए मैंने बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी हैं। तो बुजुर्ग ने जो जुमला इरशाद फरमाया जी वो आप सुने, अजीब बात है। बुजुर्ग ने फरमाया, हवा तो बगैर नीयत के आ जाएगी, हवा के लिए नियत करने की तो कोई जरूरत नहीं, आदमी नियत करे तो हवा आएगी, नियत नहीं तो हवा नहीं आएगी, ऐसी बात तो नहीं है, बगैर नियत के भी हवा आ जाएगी। आपने जो बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी इसके लिए आप नियत ये कर लेते कि मस्जिद में जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो, मैंने बड़ी खिड़की इसलिए रखी है ताकि सबसे पहले मेरे घर में आवाज पहुंचे, ये नियत अगर आप कर लेते तो इतनी बड़ी खिड़की बनाने में जो आपका खर्च हुआ, जो आपने पैसा लगाया, उस पर भी अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा, उस पर भी अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। इसलिए बुजुर्गों, दुनियावी जिंदगी बहुत आसान है, इंसान को बस अपना माइंड सेट बदलना है, اپنی سوچ بدلنا ہے کہ مجھے دنیا کے لیے جینا نہیں ہے, مجھے آخرت کے لیے جینا ہے, مجھے اپنے آپ کے لیے جینا نہیں ہے, مجھے اللہ رسول کے لیے جینا ہے, اور ان کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کر لینی ہیں, اور دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے, آخرت خواہش کے پورا کرنے کی, جنت خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اللہ سے دعا فرما, اللہ تعالی ہمیں اپنا ذہن اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی, آخرت کو زندگی کا مقصد بنانے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے.